हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 23 और 24, श्लोक नंबर 23 एंड 24। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले हृदय से समस्त भौतिक इच्छाओं और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुति देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान मोस्ट कॉन्फिडेंटल नॉलेज। भगवान श्री कृष्ण इस श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बहुत ही साधारण तरीके से बता रहे हैं, कि साधारण से साधारण बुद्धि वाला जीव भी उसे बहुत ही आसानी से ग्रहण कर सकता है। श्लोक नंबर 22 में भगवान ने बताया, अनन्यास चिंतयतो मां ये जना पर्युपासते। अनन्यास मतलब दूसरे किसी की नहीं। भगवान यहाँ पर ने दूसरे समस्त, चाहे वो कोई दूसरा अवतार ही क्यों ना हो, देवी देवताओं की तो बात बहुत आगे है, लेकिन भगवान ने कहा माम अनन्यास चिंतयंतो माम, जो सिर्फ और सिर्फ मेरी उपासना करते हैं, ये जना पर्युपासते, जो सही तरह से मेरी उपासना करते हैं केवल मुझे प्राप्त करने के लिए, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम महाम्यहम्, तो उसके योगक्षेम का मैं वहन करता हूँ, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए मैं स्वयं उनका वहन करता हूँ। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, समझो अर्जुन ने कहा क्योंकि आप समग्र सृष्टि का वहन करते हो, सारी सृष्टि को ही हर वस्तु प्रदान करते हो, जैसे भगवान ने कहा पहले भी Maya tatam idam sarvam jagad avyaktamurtinam nastani sarvabhutani. कि ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है और समस्त जीव मुझ में है, यानी कि भगवान ही तो सब जीवों की रक्षा कर रहे हैं, सबको जो जो उनके कर्मों के अनुसार प्राप्त होना है वो सब कुछ तो भगवान उन्हें दे ही रहे हैं, भगवान ही दे रहे हैं ना। तो अर्जुन मानो पूछ रहा है, तो आपने सबको सब कुछ आप ही दे रहे हो, तो भक्तों के लिए जो अनन्या चिंतयंतो माम है उनके लिए विशेष क्या करते हो? तो अर्जुन को भगवान कहते हैं, क्योंकि उनको तो उनके कर्मों के अनुसार जो कुछ प्रदान करना है वो मेरी शक्तियां ही उन्हें प्रदान कर देती हैं, परंतु जो मेरे भक्त होते हैं उनकी संरक्षण, उनका संरक्षण, उनकी आवश्यकताओं को मैं स्वयं वहन करता हूँ, मैं स्वयं आता हूँ, उनको इस भौतिक जगत में आता हूँ, उनको उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और उनकी सुरक्षा करने के लिए मैं उनको इटर्नल सुरक्षा संरक्षण प्रदान करता हूँ। क्योंकि दूसरों के लिए तो भगवान ने कहा ना, कल्पक्षय पुनस्तानि, कल्पादौ विसृज, कल्पकांत होने पर सब संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती है, फिर कल्प का प्रारंभ होता है, तो वापस उनको इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। लेकिन जो मेरे भक्त हैं उनको संपूर्ण संरक्षण प्राप्त होता है। तो मानो यहाँ पर कोई एक छोटा सा प्रश्न ये भी आता है कि अगर भगवान उनका वहन करते हैं, भगवान स्वयं ढोते हैं उनके भार को, तो फिर क्या भक्त की ये योग्यता नहीं है कि भगवान से कहे कि नहीं आपको मेरे लिए कष्ट उठाने की आवश्यकता? मतलब कहने का ये अर्थ है कि क्या भक्त को यह शोभा देता है कि भगवान उनके लिए वहन करें, स्वयं भगवान उनके लिए भार उठाएं? क्या भक्त को ऐसा शोभा देता है? लेकिन जैसे हम देखते हैं, जब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वृंदावन में रहते थे, कंटिन्यूस भगवान का भजन करते थे, एक बार रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास आए और उस समय सनातन गोस्वामी की इच्छा हुई कि क्योंकि रूप गोस्वामी बहुत समय के बाद आए हैं तो मैं उन्हें खीर खिलाऊं। बहुत ही सुंदर खीर बना के खिलाने का विचार आया, परंतु देखा वो मधुकरी करने जाते नहीं थे और उनके पास कोई ऐसी सामग्री नहीं थी जिससे वो उनके लिए खीर बनाते। तो शास्त्र कहता है, उस समय नन्ही सी कन्या श्रीमती राधारानी एक नन्ही सी कन्या के रूप में आई, उनके लिए बोला, बाबा मैं आपके लिए खीर लेकर आई हूँ। तो इतना जब खीर को रूप गोस्वामी ने चखा और कहा कि ये इसका स्वाद तो साधारण लगता नहीं है, ये तो साधारण इस भौतिक जगत की लगती नहीं है, ये तो आध्यात्मिक जगत की है, ये कहाँ से लाई तुमने? तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि मेरी इच्छा थी कि मैं आपको खीर खिलाऊं, मेरे पास कोई सामग्री नहीं थी, तो हृदय में ऐसा भाव था कि भगवान किसी तरह से प्रदान कर दो तो मैं आपको खिलाऊं। तो फिर है ना, एक कन्या लेकर आई थी। तब रूप गोस्वामी को बहुत दुख हुआ, बहुत बहुत दुख हुआ, बोले तुम ऐसी इच्छा कैसे कर सकते हो जिसके लिए श्रीमती जी को कष्ट हो पहुंचे। अक्सर हम देखते हैं जब श्री सनातन गोस्वामी धूप में बैठकर भजन करते थे तो श्रीमती राधा रानी अपने आंचल से उनको धूप को रोकती थी, क्योंकि वो अपने लिए घर नहीं बनाते थे, लेकिन वो अपने आंचल से उनको संरक्षण प्रदान करती थी। फिर रूप गोस्वामी ने कहा कि देखो सनातन, तुम्हारे कारण भगवान को कष्ट मिलता है, तुम्हारे कारण श्रीमती जी को कष्ट यहाँ पर आना पड़ता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने लिए एक झोंपड़ी बनवा लो ताकि श्रीमती जी को तो इतना कष्ट ना हो। तो मतलब एक भक्त को क्या शोभा देता है कि भगवान से सेवा कराए, भगवान को योगक्षेम वहन करने के लिए प्रयुक्त करें? तो इसका उत्तर यह है कि भगवान को इससे कष्ट नहीं होता, बल्कि भगवान को इससे और भी आनंद आता है। यदि भगवान भक्त के लिए कुछ कर सकता है, वह भक्त की कोई इच्छा नहीं होती। साफ साफ शास्त्र कहता है, अन्य अभिलाषता शून्यम, भक्त के हृदय में कोई अभिलाषा होती ही नहीं है, लेकिन भगवान की इच्छा होती है कि किसी तरह से मैं अपने भक्त को कुछ आनंद प्रदान कर सकूं। जैसे एक प्रेमिका होती है और एक प्रीतम होता है। प्रेमिका खुद से चल सकती है, उसकी इच्छा नहीं होती है कि प्रीतम जो है वो मुझे गोद में उठा के चले, इसी प्रेमिका की इच्छा नहीं होती है। लेकिन प्रीतम की ये इच्छा होती है कि मैं अपनी प्रेमिका को अधिक आनंद प्रदान करूं, इसलिए मैं उसे चलने का भी कष्ट नहीं देना चाहता, इसलिए वो अपनी गोद में उठाता है। उसी तरह से भगवान जो है वो भक्त की इच्छा नहीं होती कि भगवान मेरी सेवा करे या मुझे किसी तरह से आनंद प्रदान करे। भक्त की केवल इतनी इच्छा होती है कि मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं। उसके मन में रंच मात्र भी ये कामना नहीं होती है कि कृष्ण आकर उसकी सहायता करे। उसके मन में केवल इतना होता है कि मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। और जब ये कामना उसकी होती है तो कृष्ण के मन में भी यही इच्छा होती है कि मैं कैसे अपने भक्त को आनंद प्रदान करूं। और इस तरह से परस्पर एक दूसरे को आनंद प्रदान करके ही भक्त और भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके बाद मानो अर्जुन के मन में एक और प्रश्न आता है कि भगवान आपने तो श्लोक नंबर 20 में कहा त्रैवेद्या माम, जो तीनों वेदों का अध्ययन करते हैं वो भी मेरी ही उपासना करते हैं। त्रैवेद्या माम सोमपाहा पुत्र, अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली तो आपकी ही पूजा करते हैं। तो कृष्ण आपके अनुसार जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप में आपकी ही पूजा करते हैं। मुझे ये बताओ फिर उनको योगक्षेम महामयम क्यों नहीं मिलता, है ना? जैसे आपने कहा जो मेरी पूजा करते हैं उनको क्या मिलता है, योगक्षेम महामयम, तो वो भी तो इनडायरेक्टली आपकी पूजा करते हैं। उनको गतागतम काम कामालबंधे क्यों प्राप्त होता है, जैसी उनकी इच्छा होती है, इंद्र तृप्ति की इच्छा होती है तो उसी अनुसार उनको गति मिलती है, उनको योगक्षेम महामयम क्यों नहीं मिलता? वो भी तो आपकी पूजा करते हैं ना इनडायरेक्टली। तो उसका उत्तर देते हुए आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन, वो भी मेरी ही पूजा करते हैं परंतु अविधि पूर्वकम। आज का श्लोक पढ़िए मेरे साथ। भगवान कहते हैं, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ति श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधिपूर्वकम्। शब्दार्थ, ये अपि अन्य देवता भक्ता, ये मतलब जो, अपि यानी भी, अन्य यानी दूसरे देवता देवताओं के भक्तगण हैं, वो जो दूसरे देवताओं के भक्तगण हैं, यजन्ते श्रद्धयान्विता, और बहुत ही श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। तेपि मामेव कौन्तेय, ते मना वो भी, माम एव, भगवान कहते हैं केवल मुझको ही पूछते हैं, हे कौन्तेय, परंतु यजन्ति अविधि पूर्वक, यजन्ति मना पूजा करते हैं अविधि पूर्वक, त्रुटिपूर्ण ढंग से। अनुवाद, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है, उदाहरणार्थ जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी ना डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधिपूर्वक कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। श्रील प्रभुपाद की जय हो। आगे श्लोक नंबर 24 वो भी मेरे साथ पढ़िए। भगवान कहते हैं अहम् हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्यवन्ति ते। अहम् हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेना तश्यवन्ति ते। अहम् हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेना तश्यवन्ति ते। अहम् हि सर्वयज्ञानां, अहम् यानी मैं ही, अर्थात निश्चित रूप से सर्व समस्त यज्ञानाम यज्ञों का भोक्ता च प्रभुरेव च, भोग करने वाला तथा स्वामी, एव यानी भी, एव च तथा न तु माम अभिजानन्ति, न मतलब नहीं तू लेकिन, माम मुझको अभिजानन्ति जानते हैं, तत्वे यानी वास्तव में, अतः अतेव च्यवंती यानी नीचे गिरते हैं ते वे। अनुवाद, भगवान कहते हैं मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थ है विषों। श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विषों को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसीलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। श्री प्रभुपाद की जय। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 परम गुह्य ज्ञान। भगवान कहते हैं कि जो इस ज्ञान में श्रद्धा नहीं रखता, अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। और इससे पहले भगवान 4.40 में कह चुके, अज्ञश्च अश्रद्धदानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। अज्ञस्य अश्रद्धता, जो अज्ञानी है, सबसे पहले वो जिन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं पता, उसी के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर, न तो माम अभिजानंती, यानी उसे वास्तविक ज्ञान नहीं है, तत्वे न दश्यवंती थे, वो वास्तविक ज्ञान नहीं जानते हैं, वो अज्ञानी है, तभी वो वास्तविक लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते हैं। अज्ञस्य अश्रद्धदानस्य, और दूसरा जिनको वास्तविक लक्ष्य के बारे में ज्ञान दिया जाए परंतु फिर भी उसे उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, तो उनके अंदर श्रद्धा नहीं है तो क्या है, संशय है। और जिसके अंदर संशय है उसके लिए भगवान ने कहा, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्, ना उसे इस लोक में सुख मिलेगा ना कभी परलोक में उसे सुख मिलेगा, उसे तो बारंबार जन्म मृत्यु का चक्कर ही प्राप्त होगा। तो यहाँ अर्जुन के इस प्रश्न का कि भगवान की पूजा ही करते हैं, यदि वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं तो फिर उन्हें वास्तविक लक्ष्य योग क्षेम वहामि हम क्यों नहीं मिलता, तो भगवान इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, ये अप्यन्न देवता भक्ता, जो दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और यजन्ते श्रद्धयान्विता, यहाँ पर ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, श्रद्धयान्विता, बहुत ही श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। अब देखो, देवताओं की भक्ति दो तरीके से की जाती है, एक तो आपको एक हृदय के अंदर पूरी श्रद्धा हो, पूरा विश्वास हो कि जिस देवता की मैं पूजा कर रहा हूँ वह सर्वश्रेष्ठ है, मतलब सर्वश्रेष्ठ मानकर उसकी पूजा करना कि वही सब कुछ है, उसी की मुझे पूरा पूजा करनी है और उसी के द्वारा मुझे सब कुछ प्राप्त होगा, ठीक है। तो कोई ये सोच कर पूजा कर रहा है, श्रद्धयान्विता, बहुत ही श्रद्धा है उसके अंदर, पता है उसको कि वही सत्य है, वही भगवान है, उसी की मुझे पूजा करनी है, इसलिए वो बहुत ही श्रद्धा से ऐसे ही खाली फॉर्मेलिटी पूरी करने, कुछ लोग ऐसे फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, पूजा करते हैं और बस उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन है, किसकी पूजा करनी, किसी के भी मंदिर में जाएंगे और समझें कि हाँ ठीक है, ये जो सामने है वही भगवान है, उसकी पूजा करो, उसको लोटी चढ़ाओ, उसको प्रणाम करो, उसको अपना सारा जो भी हृदय के अंदर पूजा का भाव है वो दे दो, कल दूसरे मंदिर में जाएंगे तो उधर भी जाके यही करेंगे, कल तीसरे मंदिर, मतलब ये तो समझो बिल्कुल बेवकूफी है, समझ में नहीं आ रहा उसको कि किसके अंदर मुझे श्रद्धा रखनी है, श्रद्धा ही नहीं है उसकी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही श्रद्धा से वो पूजा कर रहा है। और तीसरे नंबर के, तीन तरह से पूजा की जाती है, तीसरे नंबर की भी पूजा है, वो क्या है, उसमें देवता की पूजा करने वाला देवता को भगवान नहीं मानता परंतु भगवान का प्रतिनिधि मानकर उसकी पूजा करता है। प्रतिनिधि मानकर मतलब जैसे वो जानता है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण है परंतु भगवान ने इन देवताओं को विभिन्न कार्यों के लिए रखा है, इसलिए जो छोटी प्रॉब्लम है या छोटी सी जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए इस देवता की शरण में जा सकते हैं और इससे यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये कैसे है, जैसे युधिष्ठिर महाराज, जब युधिष्ठिर महाराज वन में गए थे और जब उनको 12 साल का वनवास मिला था तब उनके पास बहुत सारे ब्राह्मण आते थे, तो युधिष्ठिर महाराज का स्वभाव था कि वो कभी भी ब्राह्मणों को खाली हाथ नहीं भेजना चाहते थे, उनको प्रसाद इत्यादि खिला के भेजना चाहते थे। तो उन्होंने कृष्ण से कहा, कृष्ण सारे ब्राह्मण आते हैं और बगैर भोजन किए जाते हैं क्योंकि मेरे पास तो कुछ होता नहीं है खिलाने के लिए, तो मुझे बहुत दुख होता है, कोई उपाय करो ना कि मुझे कुछ उनके मेरे पास कुछ ऐसा हो कि मैं उन्हें भरपेट भोजन करा के फिर अपने घर से भेजूं। तब भगवान ने उन्हें बताया कि तुम सूर्य देव की पूजा करो, वो तुम्हें अक्षय पात्र प्रदान करेंगे और उस पात्र में से जितने भी लोगों को तुम्हें भोजन खिलाना होगा तो तुम खिला सकोगे। भगवान कह रहे हैं तुम जाके बोल सकते हो उनको, क्योंकि भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए यदि तुम्हें ना, तो युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि वास्तव में भगवान कृष्ण है, तो कृष्ण ने उपाय बताया तो ठीक है उनको उनसे मांग लेता हूँ, तो मांग लिया। कभी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता बताई, फिर भी युद्ध करने के लिए उन्हें शक्ति की पूजा शक्ति की आवश्यकता थी, तो उन्होंने कहा कि दुर्गा क्योंकि शक्ति प्रदान करती है, आप उनको प्रणाम करो और उसके बाद तुम युद्ध शुरू करो। तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि आप शक्ति की आराधना करो, और तो और स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जब इस भौतिक जगत में आए तब भी वो समुद्र से रास्ता मांग रहे, समुद्र की आराधना कर रहे, विधिवत उनकी पूजा कर रहे हैं विधि से, और विधि से पूजा करने के बाद भी समुद्र ने जब रास्ता ना दिया तब श्री राम ने कहा उनको कि मैंने कितना विधि से पूर्ण विधि के द्वारा मैंने आपकी पूजा की, लेकिन आपने मुझे रास्ता नहीं दिया, अब देखिए मेरा क्रोध। फिर वो बोला अब तक तो संसार ने राम की शांत मुद्रा का दर्शन किया है, अब संसार राम का क्रोध देखेगा। बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे और तब समुद्र देव आ गए थे और उनसे याचना की थी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि शास्त्र में भी ऐसी विधि है कि यदि किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता है और उसके लिए यदि किसी देवता को भगवान का प्रतिनिधि जानकर उसके, मतलब टेम्परेरी, ऐसा नहीं है कि फिर वो आपका आराध्य बन जाए, ऐसा नहीं है कि फिर दुर्गा मैया अर्जुन की आराध्य माता बन गई बस उसके अतिरिक्त और कोई नहीं, या फिर इंद्रदेव जो है या फिर सूर्य देव जो है वो युधिष्ठिर के आराध्य बन गए, या फिर समुद्र की पूजा करने के बाद समुद्र देव ही श्री राम के आराध्य देव बन गए, नहीं ऐसा नहीं। वो टेम्परेरी भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो वास्तव में भगवान के भक्त हैं, जैसे पांडव जो हैं वास्तव में भगवान के भक्त हैं, परंतु ये किसी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए उस पर्टिकुलर देवता को भगवान का प्रतिनिधि मानकर उसकी भक्ति की भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए, जैसे और वो भी वस्तु क्यों प्राप्त करनी है ये भी ध्यान में रखिए। युधिष्ठिर महाराज को अक्षय पात्र प्रदान करना था क्यों, क्योंकि वो ब्राह्मणों को प्रसन्न करना चाहते थे और ब्राह्मण को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। समझ में आ रही है बात कि उनको इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई, भगवान ने ये नहीं कहा था तुम्हें अपनी इंद्रियों को तृप्त करना है इसलिए तुम उस पर्टिकुलर देवता की पूजा करो ताकि तुम्हें अक्षय पात्र मिले, नहीं इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए गौ ब्राह्मण हिताय से, क्योंकि भगवान ब्राह्मण को प्रसन्न करने से प्रसन्न होते इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने उनकी पूजा की। और क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि वो युद्ध में विजयी हो, इसलिए भगवान की इच्छा से उन्होंने देवी माता को प्रणाम किया था और उनसे आशीर्वाद दिया था। उस समय देवी प्रकट हुई थी और उन्होंने प्रकट होकर अर्जुन को क्या कहा जानते हो, अर्जुन को कहा क्योंकि मेरे स्वामी कृष्ण तुम्हारे साथ हैं इसलिए तुम्हारी विजय तो निश्चित है, लेकिन क्योंकि आप मुझे प्रणाम कर रहे हो इसलिए अब मैं आपको मेरा आशीर्वाद भी प्रदान है, तो वैसे ही अगर मेरा आशीर्वाद तुम्हें नहीं भी मिलता था, खाली कृष्ण ही तुम्हारे साथ होते तो भी तुम्हारी विजय अवश्यंभावी थी। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति को
पूरा करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, तो फिर उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने 7.20 में बताया, कामस्तैस्तर हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनकी बुद्धि काम वासनाओं ने चुरा ली है, हरण कर दिया है जिसका ज्ञान, वही देवताओं की पूजा करते हैं। तो यदि भगवान की सेवा में कोई बाधा हो रही है या भगवान की सेवा करने में आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है, तो उसके लिए यदि किसी देवता की पूजा करते हैं या उनसे प्रणाम करते हैं कि क्योंकि ये देवता आप भगवान के प्रतिनिधि हो, मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो ये वस्तु की मैं भगवान की सेवा के लिए प्राप्त करना चाहता हूँ, तो फिर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भगवान की अच्छी भक्ति कर सकूं। उसमें रंच मात्र भी हमारी इंद्रिय तृप्ति यदि शामिल हो गई तो फिर क्या होगा, काम स्तर फृतज्ञाना। फिर भगवान कहते हैं मूढ़ हैं वो, बेवकूफ हैं जो इंद्रिय तृप्ति के लिए सेवा करते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर भगवान कहते हैं ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, जो बहुत ही श्रद्धा से दूसरे देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, श्रद्धा से मतलब उन्हें ही सब कुछ मानते हैं, तेपि मामेव कौन्तेय, वो भी मेरी ही पूजा करते हैं, माम एव निश्चित रूप से सिर्फ मेरी पूजा करते हैं। वास्तव में इस भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के अतिरिक्त और कोई सत्ता है ही नहीं। भगवान कहते हैं 7.7 में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, जिस प्रकार मोती धागे में पिरोए होते हैं उसी प्रकार संपूर्ण जगत मुझ पर आश्रित है। तो सारे देवी देवता भी भगवान पर आश्रित हैं, तो इनडायरेक्टली अगर किसी देवी देवता की पूजा की जा रही है तो भी भगवान की पूजा की जा रही है, परंतु भगवान कहते हैं यजन्ति अविधि पूर्वक, वो यजन करते हैं, पूजा करते हैं अविधि, वो विधि गलत है। और श्रील प्रभुपाद जी ने उसको बहुत ही सुंदर रीति से उदाहरण में बताया कि जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी ना डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। अब दो वजह है, आप देवता की पूजा क्यों कर रहे हो उसके दो कारण यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, या तो आपको पर्याप्त ज्ञान नहीं है, पर्याप्त ज्ञान क्या है वो भगवान आगे वाले श्लोक में बताया, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, वास्तव में मैं हूँ भोक्ता। अब जो वास्तविक भोक्ता है उसको भोजन ना देकर यदि अन्य पार्ट्स ऑफ बॉडी को दिया जाएगा तो वो ज्ञान नहीं, हमें वास्तविक ज्ञान नहीं है। जैसे अभी देखो ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है श्रीमद् भागवतम महापुराण 31.14 चौथा स्कंद अध्याय 31 श्लोक नंबर 14 इसमें बताया जाता है, नारद मुनि कहते हैं यथा तरो मूल निषेचने न प्रत्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा चथेन्द्र इंद्रियाणाम तथैव सर्वार्हम अच्युते च, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी पत्तियां और शाखाएं तृप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार यदि आमाशय को भोजन दिया जाता है यानी पेट में भोजन दिया जाता है तो सारे हमारे जितने भी अंग हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब संतुष्ट हो जाती हैं। तो वास्तविक तरीका क्या है, पेट को भोजन खिलाना। तो यदि किसी को पता ही नहीं है कि वो किस तरह से खिलाना है तब वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि क्योंकि हाथ के द्वारा भोजन मैं कमाता हूँ तो मैं आज ये रसगुल्ला या गुलाब जामुन पूरे दिन अपने हाथ में रखूंगा, मैं पेट को नहीं खिलाऊंगा। हाथ में रखेगा एक घंटा दो घंटा तीन घंटे के बाद क्या होगा, स्लिप हो जाएगा, वो थक जाएगा और वो रसगुल्ला या गुलाब जामुन भी जाया हो जाएगा, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर थोड़ी सी बुद्धि यूज करेगा वो सोचेगा कि वास्तव में तो पेट को भोजन खिलाना ना, तो पेट को भोजन यदि मैं खिलाऊं तो जरूरी थोड़ी है मुंह के द्वारा खिलाऊं, है ना। जैसे ENT के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें पता होता है कि एयर जो हमारे कान के होते हैं और जो नोज के जो नोसल्स होते हैं और जो गला थ्रोट जो होता है वो सारी जो नलियां होती हैं वो डायरेक्ट से जाती हैं हमारे आमाशय की तरफ। वो जगह मतलब किधर से भी आप अक्सर कभी होते हैं ना बीमार होते हैं माउथ जिनका माउथ से कुछ नहीं खाते वो नोज में एक वो लगाते हैं पाइप की तरह उसी में उनको दूध दूध डाल के जो भी लिक्विड होता है वो डाल के दे देते हैं और उनको पेट में चला जाता है, ऐसा होता है ना। तो वो यदि ये सोचे कि मैं अब भोजन माउथ के द्वारा नहीं खाऊंगा बल्कि अपनी नाक के द्वारा खाऊंगा या अपने कान के द्वारा खाऊंगा, जगह तो पेट में ही जानी है ना वो, लेकिन वो क्या है, अविधि पूर्वकम। तरीका भले ही वो पेट में जा रही है लेकिन तरीका गलत है, उससे आप बीमार हो जाओगे, उससे आप कभी भी ना आनंद से भोजन नहीं खा रहे हो। बीमार होता है जब तक, तब तक उसको डॉक्टर उस नली से दूध दूध देते हैं, लेकिन फिर जैसे ही वो थोड़ा सा स्वस्थ हो जाता है। तो वास्तविक तरीका है, विधि क्या है कि आपको मुंह के द्वारा खाना है, और मुंह के द्वारा भी कुछ लोग क्या करेंगे, अगर गलत तरीका क्या होगा कि छोटे बच्चे होते हैं चबाएंगे नहीं और निगल लेंगे, निगल लेंगे तो क्या होगा, तो फिर वो बीमार हो जाएगा। क्योंकि वास्तविक तरीका क्या है कि आप भोजन का एक बाइट उठाओ और उसको अच्छे से चबा के इतना सॉफ्ट बना दो कि वो आपके गले से बहुत ही इजीली अंदर जाए और डाइजेस्ट हो जाए, है ना, ये तरीका है। तो उसी तरह भक्ति कैसे करनी है, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 24 में, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, कि वास्तव में जो भी वस्तु, जो भी यज्ञ आप करते हो और जो भी तपस्या करते हो, जैसे हमने पहले श्लोक नंबर 5.29 पढ़ा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, कि वास्तव में जीव का लक्ष्य क्या है, शांति प्राप्त करना है। शांति प्राप्त करना है तो उसके लिए उसको वास्तविक जो विधि है उसको अपनाना पड़ेगा। यही हम पर शिला प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर एक एग्जाम्पल दिया है कि विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। जितने भी देवता हैं वो भगवान की, गवर्नमेंट भगवान की है, परंतु वो अलग अलग एम्प्लॉयर्स हैं। तो मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। अगर कोई अधिकारी अपना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालता है तो जरूरी नहीं है कि उसको हम फॉलो करें, या फिर उसको फॉलो करके हमें गवर्नमेंट की जो है ना वो सुरक्षा प्राप्त होगी। उस वो अगर जैसे अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज हमें अप्लाई प्रोवाइड करने से मना किया और वो जो एम्प्लॉयर होता है वो मुझे बोलता है कि भाई अगर आप मुझे 1,00,000 रुपए दे दोगी तो मैं आपको ये करवा के दे दूंगा, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, तो फिर ये अगर हम उनको घूस देकर, यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बताया है कि इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। अगर हम गवर्नमेंट की मतलब भगवान की पूजा करेंगे तो सारे जितने अधिकारी हैं वो स्वतः पूजा हो जाएंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उन्हें घूस देना अवैध है। तो जो उन्हें घूस देता है, रिश्वत देता है, वो अविधि से कार्य कर रहा है। लेकिन अविधि से कार्य कर रहा है तो उसे सदैव ये डर रहेगा कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ हूं। लेकिन यहाँ भौतिक जगत में आप बोलोगे कि सभी तो ऐसे कर रहे हैं, है ना, अब सब लोग है ना गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो इंस्टेंट लाभ चाहते हैं, इंस्टेंट लाभ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से मेरा काम हो जाए और उसके लिए मुझे 1,00,000 रुपए देना पड़े, 2,00,000 रुपए देना, फटाफट ये कार्य होना चाहिए ताकि मैं आगे और उन्नति कर सकूं या जो मेरा लक्ष्य है उसको प्राप्त करूं। तो जो डेस्टिनेशन बनाया हुआ है, जो लक्ष्य बनाया है, उसको हमें जल्दी प्राप्त करना है, और वो लक्ष्य भी वास्तव में आनंद प्राप्त करने के लिए बनाया है, है ना। वास्तव में वो चाहता है कि ये लक्ष्य मुझे प्राप्त हो जाएगा तो आनंदित हो जाएगा, तो ये भी अज्ञानता है, क्योंकि भौतिक जगत में कोई भी वस्तु प्राप्त करके उसे कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो वास्तविकता क्या है कि अभी इस भौतिक जगत में भी जितने भी लोग हैं वो सब चाहते आनंद है, लेकिन उन्होंने अपने मन में ये सोच लिया है कि ये अमुक वस्तु, ये पर्टिकुलर वस्तु मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मैं आनंदित होऊंगा। तो भगवान के पास नहीं जाते, क्योंकि गवर्नमेंट के तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर भगवान का भक्त बनेंगे तो उन्हें 4 नियम का पालन करना पड़ेगा,
और 16 माला जप करनी पड़ेगी, प्रभात साधना करनी पड़ेगी, भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, भागवतम पढ़ना पड़ेगा, शुद्ध जीवन गुजारना पड़ेगा, भगवान की भक्ति में बहुत कष्ट दिखेगा। फिर वो सोचेंगे कि इस तरह से भगवान की भक्ति, मुझे भक्त नहीं बनना है, मैं साधारण इंसान ठीक हूँ, लेकिन ये वस्तु प्राप्त करनी है, तो उस वो वाले अधिकारी को या वो वाले एम्प्लॉयर को अगर मैं थोड़ी सी घूस दे दूंगा, वो मुझे दे देगा और मैं प्राप्त हो, मुझे मेरी चीज प्राप्त हो जाएगी, फिर मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, फिर मुझे उसका भक्त कंटिन्यूस बनने की जरूरत नहीं है, मुझे भगवान से कुछ नहीं लेना, भगवान की भक्ति नहीं करनी, लेकिन एक पर्टिकुलर वस्तु चाहिए, वो मैं बाजार से, समझो जैसे एक बच्चा है, उसको बुखार है और उसको आइसक्रीम खानी है, परंतु उसके पिताजी उसको आइसक्रीम लेके नहीं दे रहे, क्योंकि उसके पिताजी को पता है कि यदि मैं उसको आइसक्रीम लेके दूंगा तो फिर वो और भी बीमार हो जाएगा, तो उसको लेके नहीं देते, या फिर उसके पिताजी कुछ शर्तें रखते हैं, देखो मैं तुम्हें आइसक्रीम लेके दूंगा लेकिन आपको अपना लेसन कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको ये जो आज होमवर्क मिला है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, ये कार्य कर लो और अपना प्रसाद फिनिश करो, उसके बाद मैं तुम्हें लेके दूंगा, पिताजी कुछ कंडीशन रखते हैं। लेकिन अगर वो मार्केट में जाता है, पैसे हैं उसके पास, चोरी करता है घर से और फिर वो मार्केट में जाकर किसी से भी लेकर ले लेता है, तो फिर वो उसको आसानी से, भले वो उन्हें नहीं देखेंगे कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं किया है, उसने अपना प्रसाद खत्म किया या नहीं किया है, या उसको बुखार है या नहीं है, वो कुछ नहीं देखेंगे, वो पैसे लेंगे और उसको दे देंगे, उसका काम हो गया। तो वास्तव में क्या है कि अब उस बच्चे के पास इच्छा पूरी करने के दो तरीके हैं, या तो वो चोरी करके करे, क्योंकि वो पिता से तो वो मांगना नहीं चाहता, क्योंकि पिता ने बहुत सारे रूल्स रखे हुए हैं, तो पिता से नहीं मांगता, या तो वो चोरी करे, या फिर एक ऐसा तरीका है कि अगर उनके घर पे, जैसे हमारे किसी बच्चे को अगर टॉफी खाने की इच्छा हो, पिताजी उसको टॉफी नहीं लेके दे रहे हैं, बोले नहीं तुमने अभी तक होमवर्क नहीं किया, मैं तुमको नहीं लेके दूंगा, ये तुम ये करो फिर मैं लेके दूंगा, लेकिन उसके घर पे अगर कोई गेस्ट आते हैं और फिर वो उनका अंकल आता है तो वो उसको है ना टॉफी दिलाता है, तो फिर पिताजी बोलते हैं कि तुम, मैं तुमको नहीं लेके दूंगा, चलो ठीक है अंकल ने दे दिए तो तुम भले खा लो, लेकिन मैं तुमको लेके नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानते हो इसलिए। तो फिर एक तरीका ये है कि तुम उनसे ले लो, अपने अंकल से, चोरी मत करो। तो इस भौतिक जगत में क्या है, 50% लोग ये सोचते हैं, 50-70% ये सोचते हैं कि जो भी भौतिक वस्तुएं चाहिए वो चोरी करके ले लें हम लोग, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं जानते, वो एथिस्ट होते हैं, वो भगवान की भक्ति को नहीं जानते, वो देवताओं की भक्ति को भी नहीं जानते, वो क्या कहते हैं चोरी करके ले लो बस, मुझे जो चाहिए वो कैसे आई हुक एंड क्रुक मुझे प्राप्त करना। लेकिन वेदों ने ये एक निर्देशन दिया है, ये शास्त्र ने ये नियम बनाया कि ठीक है आप यदि भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हो तो अपने चाचा के पास से या अपने अंकल के पास से जैसे टॉफी ले ली तो उससे क्या तुम्हारा काम तो हो गया, ये कम से कम चोरी करना नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चाचा आएंगे उसको बोलोगे मुझे चाहिए, थोड़ा सा उसको ठगाओगे करोगे कैसे भी करके आप उससे प्राप्त कर सकते हो। ये तरीका ऐसा है कि बाप से ना मांगा, समझो अपने चाचा से या किसी से मांगा, लेकिन फिर भी ये तरीका गलत है। लेकिन वेदों में क्यों बताया गया है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति देवताओं का भगवान का प्रतिनिधि मानकर, वो मानता है कि भगवान कृष्ण है लेकिन वो भगवान का प्रतिनिधि मानकर उसकी पूजा करते हैं, तो क्या होता है धीरे 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 प्रगति करते हैं और उनको आत्म साक्षात, क्योंकि देवताओं की भी पूजा करता है तो धीरे धीरे प्रगति करेगा ना, कुछ नियम को पालन करेगा, प्रणाम करेगा और है ना शुद्ध जीवन गुजारेगा, तो उसके बाद क्या होगा, उसे आत्म साक्षात्कार होगा, उसे ये लगेगा कि ये देवता तो केवल भौतिक वस्तुएं प्रदान कर सकते हैं, वास्तव में मैं आत्मा हूं और मुझे इटर्नल शांति चाहिए। क्योंकि इस भौतिक जगत में भी देखो आप कोई भी टेम्परेरी वस्तु नहीं चाहिए, किसी को भी टेम्परेरी मतलब जो आर्जी तौर पर कोई घर ऐसा नहीं चाहिए जिससे आपको एक साल के बाद निकाल दिया जाएगा। आप देखो अगर एक बहुत ही सुंदर कॉलेज हो, बहुत ही प्यारा हो, लेकिन उसमें सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हो, अच्छी पढ़ाई हो रही हो, अच्छा रिजल्ट हो, लेकिन आपको पता चले कि ये कॉलेज 2 साल के बाद बंद हो जाएगा,
आप आगे इसमें नहीं पढ़ सकोगे, आप उसमें एडमिशन लोगे। कोई स्कूल हो जहाँ पर बहुत अच्छी मैनेजमेंट हो, बहुत सारी टीचर्स भी बहुत अच्छी हो, लेकिन आपको पता चले कि ये कॉलेज, ये स्कूल जो है वो बस आखिरी साल है उसका, उसके बाद बंद हो जाएगा, या फिर 2 साल के बाद बंद हो जाएगा, या 3 साल, आप उसमें एडमिशन लोगे, आपको एक टेम्पररी चीज नहीं चाहिए, आपको परमानेंट चीज चाहिए जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। आप कोई अच्छी सी जॉब आप प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, और उसमें आपको पता चले कि बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन 1 साल के बाद ये कंपनी बंद होने वाली है, आप क्या उससे वहां पर जॉब करोगे? आपको एक टेम्पररी चीज नहीं चाहिए, आपको परमानेंट चीज चाहिए। और उसी तरह ये आपका स्वभाव है, क्योंकि आप आत्मा हो, और आत्मा का लक्ष्य है इटर्नल आनंद प्राप्त करना। और इटर्नल आनंद कहाँ से प्राप्त होगा? भगवान की भक्ति करने से। इटर्नल आनंद केवल भगवान कहते हैं, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। वास्तव में जिसे शांति प्राप्त होगी वो तभी प्राप्त होगी जब वो ये जान ले कि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ। जो भी उपासना करते हो वो मेरी उपासना करोगे, तभी मुझे प्रदान करोगे, तभी आप आनंदित हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर भगवान ने कहा तेपि मामेव कुंतेय, कि जो भी जिस देवता की पूजा करता है वो भी मेरी ही पूजा करता है। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है तो फिर क्या करता है? गलत तरीके से अपनी इच्छित वस्तु पूरी करता है, प्राप्त करता है। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके उसे इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान ने पहले कहा तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर मेरी भक्ति करेगा तो मैं उसकी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, उसे पूर्ण संरक्षण प्रदान करूंगा। अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो योगक्षेमं वहाम्यहम् होगा। परंतु आज के मनुष्य में धैर्य नहीं है, वो योगक्षेम वहाम्यम इस भौतिक जगत तक ही लिमिटेड रखता है। वो सोचता है कि इस भौतिक जगत में जब तक मैं जीऊं तब तक आनंदित रहूं, उसके अंदर धैर्य नहीं है। तो वो क्या करता है? वो गवर्नमेंट के जो दूसरे जो एम्प्लॉयज हैं उनको रिश्वत देकर आनंदित होना चाहता है। परंतु ये तरीका गलत है। अब तरीका गलत है लेकिन फिर भी भगवान ने कहा मामेव कौन्तेय। मामेव कैसे है कि जैसे अगर आप वृक्ष के पत्तों को भी पानी दोगे, खाली आप एक एक पत्ते को पानी दे रहे हो, तो भी क्या होगा? वो पानी सारा स्लिप होके आएगा कहाँ पे? जड़ में आएगा। पत्ता अपने ऊपर नहीं रखेगा, एक मिनट में ये सारा, जैसे ही आपने पानी दिया वैसे ही सारा पानी ड्रॉप होकर जड़ के अंदर चला जाएगा। वो जड़ के अंदर अपने आप गया है, क्योंकि वृक्ष का ये स्वभाव है, पत्ते का ये स्वभाव है कि अपने पास नहीं रख सकता, उसे जड़ में डालना पड़ेगा। लेकिन आपको क्योंकि जड़ की ओर कोई आकर्षण नहीं है, इसलिए आपका तरीका गलत है। भगवान को तो वो सारी पूजाएं मिल जाएंगी, जितनी भी पूजा आपने की है, चाहे किसी भी देवी देवता की है, वो भगवान के पास ही जाएगी, क्योंकि भगवान ने कहा है कि तेपि मामेव कौन्तेय। इसी तरह से एक श्लोक आता है शास्त्र में, कहा जाता है आकाशम पतितम तोयम यथा गच्छन्ति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। आकाशम पतितम तोयम, तोयम कहते पानी को, जैसे आकाश से पानी बरसता है, और यथा गच्छन्ति सागरा, तो चाहे कहाँ किसी भी नदी में जाएगा, वो वास्तव में तो सागर में ही मिलने वाली है। कोई भी नदी है वास्तव में वो सागर से मिलेगी। उसी तरह सर्वदेव नमस्कार, आप किसी भी देवता को यदि नमस्कार करते हो, केशवम प्रति गच्छति, वो इनडायरेक्टली केशव भगवान श्री कृष्ण का नाम है, बोला उसी को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, किसी ने बोला श्री प्रभुपाद जी से कि स्वामी जी यदि सारे देवताओं को नमस्कार किया जाता है वो इनडायरेक्टली भगवान तक ही पहुंचता है, तो ये गलत कैसे हुआ? भगवान को ही तो पूजा करनी है, भगवान की तो भक्ति करनी है, तो भले देवताओं के माध्यम से करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हाँ बोला, आपकी पूजा तो भगवान तक पहुंच जाएगी, बिल्कुल पहुंच जाएगी, क्योंकि चाहे वो किसी वो कोई भी देवता है, वो भगवान का प्रतिनिधि है, वो अपने पास नहीं रख सकता। जिस प्रकार पत्ता अपने पास पानी नहीं रख सकता, जल के अंदर ही उसको डालना पड़ेगा, उसी प्रकार देवता भी अपने पास पूजा नहीं रख सकता, वो भगवान तक ही आपकी पूजा पहुंचाएगा। लेकिन क्योंकि आपकी श्रद्धा उस भगवान के अंदर नहीं है, तो आप भगवान तक नहीं पहुंचोगे, आपकी पूजा तो पहुंच जाएगी। जिस प्रकार से नदी का पानी, जैसे आप किसी भी नदी में पानी डालते हो एक लोटा भर के, तो वो समुद्र में जाके मिलेगा। लेकिन क्योंकि आप समुद्र से दूर हो, आप तो नदी में ही डाल रहे हो, तो आप समुद्र में जाके नहीं मिलोगे। समझ में आ रही बात कि उपासना तो भगवान तक पहुंच जाएगी, परंतु भगवान को उपासना की आवश्यकता नहीं है। भगवान जीव से उपासना करने के लिए क्यों कह रहे हैं? ताकि जीव का कल्याण हो सके। समझो कि भगवान कहते हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु माम अभिजानन्ति तत्वे नास्तश्च वन्तिते। इसलिए आप नीचे गिरते हो, भगवान आपको नीचे गिरने से बचाना चाहते हैं। भगवान को आपकी परस्तिश की आवश्यकता नहीं है, आपकी भक्ति की आवश्यकता नहीं है, आपकी पूजा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जीव जो इस भौतिक जगत में गिर रहा है बार बार, भगवान उसे वास्तविक लक्ष्य प्रदान करना चाहते हैं। इसीलिए भगवान उस जीव को वास्तविक विधि बता रहे हैं कि आपकी पूजा तो मेरे पास ही जाएगी, चाहे आप किसी को भी पूजा करते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी देवता को कहें, लेकिन आपका क्या होगा, तेरा क्या होगा? वो सोचो तुम कि तुम्हारा, अगर तुम मेरी पूजा नहीं करोगे, वास्तव में मैं भगवान हूँ, मेरी भक्ति नहीं करोगे, किसी भी देवी देवता के फेर में पड़ गए और विधिवत मेरी पूजा नहीं की, श्रद्धा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ उसी की पूजा की, तो फिर क्या होगा? भगवान बताते हैं आगे श्लोक नंबर 25 में, वो हम कल पढ़ेंगे। उसमें भगवान कहेंगे कि देवताओं की पूजा करोगे तो देवलोक में जाओगे, पितरों की पूजा करोगे तो पितृलोक में जाओगे, भूतों की पूजा करोगे भूतलोक में जाओगे, और मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आओगे। तो क्योंकि दूसरी जिस भी जगह पे जाओगे, ब्रह्म भुवन आलोक का पुनरावृत्ति नो अर्जुन, तो सोचो उपासना करने से पहले सोचो डेस्टिनेशन बनाओ, जाना किधर है। क्योंकि भगवान ने अब तक हमें सब कुछ बता दिया, ही गिव्स ऑल द चॉइसेस, नाउ बॉल इज इन आवर कोर्ट, कि आपको क्या करना है, आपको किधर जाना है। तो यहाँ पर भगवान ने हमें ये बताया कि अगर आप किसी अन्य देवता की पूजा करोगे तो भी मेरी पूजा करोगे, परंतु क्योंकि वो गलत तरीके से है, इसलिए क्या होगा कि आप वापस से नीचे गए, न तो माम अभी जानते, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते हो इसलिए वापस गिर जाओगे। वास्तव में जो भी पूजा है, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, अगर तुम मुझे ही समस्त यज्ञों का भोक्ता मानोगे तभी तुम आनंदित होगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा अपने तात्पर्य श्लोक नंबर 24 के तात्पर्य में कि यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, लेकिन वस्तुतः वह सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त है। यदि कोई देवी देवता की पूजा करके भी भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, उसका लक्ष्य अल्टीमेट गोल जो है वो कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो वो ठीक जा रहा है। लेकिन इंद्र तृप्ति के लिए यदि कुछ भी कर रहा है तो वो रॉन्ग है। तो यज्ञ का अर्थ है विष्णु यानी भगवान को प्रसन्न करना। जैसे तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अगर आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य करते हो तो वो परफेक्ट है, लेकिन अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, इसके अतिरिक्त कोई भी कार्य होगा वो आपको कर्म बंधन में डाल देगा। और वास्तव में भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अतः पुंबे द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश सुनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि भरितोषण। कि वर्णाश्रम धर्म निभाने के बाद
अगर वो उसका सही सही पालन हो रहा है तो उसका मीटर क्या निकलना चाहिए? सौ सिद्धेम हरि तोषण, कि उससे वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो यदि कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं तो समझो आप अपना कार्य परफेक्टली कर रहे हो, वरना तो श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम है, केवल अपनी इंद्रियों के द्वारा आप श्रम कर रहे हो लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होगा। इसीलिए इस श्लोक में कहते हैं भगवान कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। अगर वो प्रसन्न हो गए तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य को से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ का लक्ष्य प्राप्त क्षणिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, अतः संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना, शास्त्र हमें ये नहीं बताता कि आपको इस भौतिक जगत में किस तरह से आनंदित होना है। वो तो जो भौतिक आजकल की स्टडी है ना, वो हमें बताती है कि कैसे कमाओ, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को चीट करो, कैसे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करो और सुविधाएं प्राप्त करके सोफिस्टिकेटेड लाइफ जियो, वही काम करो, आहार निद्रा भाई मैथुन को तो जानवरों भी वही काम करते हैं, लेकिन तुम क्योंकि मनुष्य हो तो वही कार्य करो, परंतु तुम्हें वही कार्य थोड़ा अच्छे तरीके से लेवल बढ़ाना चाहिए, लेवल अच्छे लेवल पे आके करना। लेकिन शास्त्र हमें बताते नहीं, तुम मनुष्य बने हो, तुम्हारा काम उससे बड़ा है, क्या फर्क रह गया यदि तुम वही काम करोगे जो पशु करते हैं। तो धर्मो ही एको अधिक विशेष, और धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना धर्म है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो, यदि उसको आध्यात्मिक लाभ नहीं प्राप्त करना है, यदि वो किसी भौतिक इच्छा के लिए चाहता है, इच्छा रखता है, तो अच्छा यही होगा कि उसके लिए भी वो भगवान की भक्ति करे। यद्यपि ये शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जगह तो अच्छी पकड़ो, सही रास्ता तो सही पकड़ो। तो रास्ता सही पकड़ोगे तो धीरे धीरे जाकर भी कभी ना कभी अल्टीमेट गोल तुमको प्राप्त हो ही जाएगा। इसे शास्त्र कहता है अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष पर। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम, अकाम मतलब निष्काम, यदि आपके अंदर कोई इच्छा है ही नहीं, आपके हृदय के अंदर कोई भी इच्छा नहीं है तो भी, और सर्व काम होगा यानी आपके अंदर सारी भौतिक इच्छाएं, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए तो भी, और कोई इच्छा नहीं है, खाली एक ही इच्छा है क्या? मोक्ष काम, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो भी, अगर आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है तो भी, अगर सारी इच्छाएं हैं तो भी, अगर केवल मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो भी क्या करो? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण बहुत ही हृदय से तीव्र इच्छा होनी चाहिए भक्ति करने की, और भक्ति किसकी करो? यजेत पुरुष परम, भक्ति तो केवल परम पुरुष की जा सकती है, भगवान की, परम भगवान की जा सकती है जो समस्त देव देवताओं का आश्रय है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि क्या कैसे साबित हो कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुष है? तो मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। भागवतम में आठवें स्कंद के तीसरे अध्याय में एक कथा आती है गजेंद्र की। गजेंद्र एक बहुत ही बलशाली हाथी थे, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो बहुत एक पानी बहुत ही सुंदर एक सरोवर था, उसमें पानी पीने के लिए जाते हैं और वहां पर एक घड़ियाल, एक मगरमच्छ उसका पांव पकड़ लेता है। तो जब पांव पकड़ लेता है तो गजेंद्र बहुत समय तक, हजार साल तक युद्ध चलता है, छुड़ाने की कोशिश करता है नहीं कर सकता है, तो अंत में थक कर बहुत थक जाता है और वे प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि वो भगवान जो समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, वो भगवान जो समस्त देवताओं के देवता हैं, वो भगवान जिसने पूरे संसार को निर्मित किया है, मेरी रक्षा आके करें। बहुत ही सुंदर तीस हमने अभी कार्तिक मास में पढ़ा था, तो उसमें बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं, उसमें कहीं पर भी भगवान का नाम नहीं लिखते,
तो सारे देवी देवता देख रहे हैं, हजार साल तक युद्ध हो रहा है, सारे देवी देवता देख रहे हैं ऊपर से खड़े होकर, लेकिन वो उनकी रक्षा करने नहीं आ रहे हैं, उनको बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो प्रार्थना कर रहा है, करे जा रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि सारे देवी देवताओं के स्वामी हम नहीं हैं, हमारा स्वामी कोई और है। वो जानते हैं सृष्टि की रचना हमने नहीं की है, हमारा इस सृष्टि की रचना करने वाला कोई और है। वो जानते हैं कि परम लक्ष्य कोई और है, वो जानते हैं कि परम भोक्ता कोई और है। तो सारे देवी देवता खड़े होकर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि भगवान आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इतने में भगवान स्वयं आते हैं, भगवान श्री हरि उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं गजेंद्र की, यानी कि सारे देवी देवताओं के स्वामी जो हैं, परम भोक्ता जो हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो हमें हमेशा उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सफल कर सकें और वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा।